ओम शांति। मधुबन की इस पावन धरा पर ज्ञान सागर शिव बाबा के ज्ञान रत्नों का मंथन कर अमृत व ज्ञान रतन की प्राप्ति कराने वाले मुरलीधर की मुरली को हर ब्रह्मा वत्स की किताब पर अंकित कराने वाले प्रबुद्ध आदरणीय भ्राता राजू भाई जी का हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास एक गांव में आध्यात्मिक परिवार में आपका जन्म हुआ। मात्र 4 वर्ष की आयु से ही इस यज्ञ से मंथन करके निकले अमृत का पान किया और योगी जीवन जीने का अखंड व्रत लिया। सन 1972 में मात्र 16 वर्ष की आयु में पाप के हाथों में अपना हाथ दे दिया। तब से लेकर अब तक कई विभागों में अपना 100% देकर सेवा की। सन 1976 में आप दीदी मनमोहिनी जी के साथ हिंदी मुरली कंपोज करने तथा पुरुषार्थ को सरल बनाने हेतु वरदान व स्लोगन अनवरत हम तक पहुंचाते हैं। आदरणीय दादी जी द्वारा भेजा हुआ पत्र पुष्प हो या अव्यक्त इशारे व अव्यक्त बाप दादा द्वारा उच्चारे महावाक्य शब्द तह पहुंचाने का कार्य हो आपके द्वारा ही होता है। वर्तमान में आप ग्राम विकास प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन हैं। इसके अतिरिक्त यौगिक खेती के प्रोजेक्ट को उच्च स्तर पर अंजाम देकर सफलता हासिल की है, जिसमें शाश्वत यौगिक खेती योजना ग्राम दत्तक योजनाएं प्रमुख हैं। आज हम आपके वचनामृत पर लाभान्वित होंगे। विषय है तुरंत दान महापुण्य। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। हम सभी अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखकर उनके समान संपन्न संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा किस विधियों से नंबर वन बने, नर से श्री नारायण पद प्राप्त किया, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त स्वरूप से बाप दादा ने ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान खिंचवाया। ब्रह्मा बाबा किस तरह से पुरुषार्थ करके नंबर वन बने, क्या क्या किया, और अगर आप बच्चे भी उन्हें इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप भी उनके समान नंबर में आ सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की दो विशेषताएं, जिस दिन से शिव बाबा ने उन्हें अपना माध्यम बनाया, निश्चय हुआ। बाबा ने एक धक से निर्णय ले लिया, इतना बड़ा जवाहरात का बिजनेस था, इतने राजाओं महाराजाओं के साथ व्यवहार में बहुत समीपता थी, बहुत कुछ लौकिक अलौकिक पूरे समाज के अंदर आपका मान था, मर्तबा था, लेकिन शिव बाबा मिले, लक्ष्य पक्का हुआ, विष्णु चतुर्भुज के दर्शन के साथ, साक्षात्कार के साथ वरदान मिला, अहम विष्णु तत्त्वम, इसकी मैं पूजा करता था, क्या मैं ये बन सकता हूँ, कौन कह रहा है। बस निश्चय होते ही बाबा ने अपने व्यापार को एक सेकंड में समर्पित किया। अपने पार्टनर को बोला कि अभी मुझे ये हीरे नहीं लगते हैं लेकिन पत्थर लगते हैं, अब मुझे इस पत्थरों का व्यापार नहीं करना, अब मैं सच्चे हीरों का व्यापार करूंगा। किसी से पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं, लेकिन निश्चय हुआ और एक धक से निर्णय लिया और उसका एक गीत बनाया, आई तार लफ की हुआ रेल का राही, कलकत्ता से ट्रेन पकड़ी और सीधा हैदराबाद पहुंच गया। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। उसी धक से तुरंत निर्णय लेकर के जो भी संपत्ति आपके नाम पर हुई ओम मंडली का ट्रस्ट बनाया, ओम राधे मम्मा को नंबर वन ट्रस्टी बनाया, कन्याओं माताओं के हाथ में अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर दी। और समर्पित करने के बाद बहनों ने उसे कैसे प्रयोग में लाया, उसका खर्चा कैसे हुआ, कितना हुआ, कहाँ गया, कोई भी बात की इंक्वायरी नहीं की। एक धक से निर्णय लेते ही समर्पित हुए, समर्पित केवल दिया नहीं लेकिन लिखित में दे दिया कि मैं ओम राधे को अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर रहा हूं नए विश्व की स्थापना के लिए। तुरंत दान, जरा भी उसमें देरी नहीं की, एक धक से निर्णय लेते ही कर लिया। तुरंत दान महापुण्य हो गया। और दूसरा बाबा का एक बहुत फेवरेट स्लोगन था, गुप्त दान महापुण्य। उन्होंने कभी भी दिए हुए का वर्णन नहीं किया, समर्पित कर दिया तो कर दिया, किसी के आगे ये नहीं वर्णन किया कि मैंने इतना किया, मैंने जो किया उससे यज्ञ चल रहा है। कभी भी किसी के आगे, यहां तक बाबा कहते थे साकार में कि बच्चे इस हाथ से करते हैं तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी भी सदस्य को परिवार में भी किसी से आगे वर्णन नहीं किया, कभी नहीं कहा कि मैंने इतना किया है, मेरी कमाई है, मेरी कमाई से चल रहा है। जो आज बाबा विशेष इशारा दे रहे थे, मैंपन का समर्पण, मैं की बलि चढ़ा दी। और इतना उस बात से न्यारे हो गए जैसे मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ करके अपने आप को छिपाते गए। अगर कभी कोई ने बाबा के आगे बाबा की महिमा शुरू की, वर्णन किया, तो यही बाबा ने कहा, बच्चे मैं कुछ नहीं करता, मैंने कुछ भी नहीं किया, शिव बाबा कर रहे हैं, उनका यज्ञ है, उनके बच्चे हैं, वो करावनहार हैं। या तो बाबा की महिमा किया या तो बच्चों की महिमा किया, बच्चे कर रहे हैं। इतना गुप्त रह करके और तुरंत जो संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प जो आए उसमें देरी नहीं की, सेवाओं के संकल्प आए, बाबा उन्हें टच करते और बाबा तुरंत निर्णय ले लेते, ये करो अभी करो, कोई भी कार्य कल पर नहीं रखा। इसलिए ब्रह्मा बाबा का ये गुप्त पाठ, गुप्त दान, तुरंत दान उन्हें नंबर वन बना के गया। वो नरश्री नारायण पदवी मिली। अभी हम सभी बच्चों को भी बाबा यही ट्रेनिंग देते हैं, यही सिखाते हैं। कल का भरोसा नहीं, इसलिए जो कुछ करना है अभी करो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। बहुत सुंदर ढंग से वर्णन ने भक्ति में गाया है, सुना है। कोई भी कार्य के लिए कर लेंगे, हो जाएगा, अभी समय पड़ा है। बाबा हमेशा कहते हैं, मेरे बच्चों के सामने पुरुषार्थ में तीन विघ्न हैं। अगर उन तीनों विघ्नों को हटा दिया जाए तो बहुत स्पीड से पुरुषार्थ हो सकता है, नंबर वन बन सकते हैं। उसमें सबसे पहला ब्राह्मणों का शत्रु है आलस्य। पांच विकारों को जीतना बाबा कहता कई बार सहज हो जाता, लेकिन ये आलस्य इतना बड़ा शत्रु है जो पुरुषार्थ नहीं करने देता। अमृत वेले ही नींद आती है, मुरली क्लास के अंदर भी सुस्ती रहती है, सेवाओं में भी है, हो जाएगी, कर लेंगे। आलस्य के साथ साथ आलस्य का भाई अलबेलापन, और इतना अलबेले हैं, अरे किसने किया है, अभी तो समय पड़ा है, समय पर सब हो जाएगा, ठीक कर लेंगे। बाबा कभी कभी रमणीक मुरलियां चलाते हैं कि बच्चों ने, जैसे आराम का बिस्तर होता है, डनलप का तकिया लगा लेते हैं। बाबा कई बार समय की सूचना देते हैं कि बच्चे अचानक 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 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को बाबा के इस हार्न का आवाज सुनाई नहीं देता। अलबेले हैं, चल रहे हैं, बन जाएंगे, अभी कौन बन गया है। और तीसरा शत्रु आता है बहाना, बहानेबाजी। ये कारण था, इस कारण से नहीं कर पाए। बाबा के इस यज्ञ में मैंने जहां तक नोट किया, उन बच्चों ने अपना बहुत ऊंचे से ऊंचा भाग्य बना लिया जिन्होंने समय पर साथ दिया, समय पर सफल किया। जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो एक भाई महाराष्ट्र के थे, भंडारा साइड के, हर 15 दिन में उनका बहुत बड़ा अमाउंट चेक द्वारा आता था। जवाब मैं ही देता था सबका, जिसका आता था। तो एक दिन मैंने दादी जी से पूछा, ये कौन भाई है दादी, हर 10 दिन में इतने भेजता है, इतना पैसा भेजता है। कहता, तुम उसी से पूछ लो, इतना तुम भेज रहा है, तेरे बच्चों को पता है, परिवार वालों को पता है। तो वो बुजुर्ग दादा थे, वो मिले मेरे को। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं जानता हूं बाबा की यज्ञ में सब सफल करते हैं, लेकिन आप बच्चों को, परिवार को बताते हो? कहता है, उनका जो हिस्सा है, मैंने सबको जितना उनके हिस्से में सब कुछ दे दिया है, और जो मेरे नाम का हिस्सा है वो मैं सफल कर रहा हूं, इसके लिए उनको क्या पूछना है। और इतनी भावना के साथ, इतने सच्चाई के साथ वो अपना एक एक कणा दाना यज्ञ में सब सफल करके फिर शरीर छोड़ा। ऐसी आत्माएं यादगार बना देती हैं। और बाबा के ये कार्य जो इतने सब चल रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उसका मूल कारण है कि बाबा के ऐसे गुप्त बच्चे हैं जो गुप्त रीति से अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास, इन सब शक्तियों को सफल करते हैं और उसके लिए डिले नहीं करते हैं। कई बार मैं कहीं कहीं चक्कर पर जब निकलता हूं, जाता हूं सेंटर्स पर, दो साल से तीन साल से जमीन लेके रखी है, बनाने के लिए पैसा नहीं है, सहयोग कौन करेगा, लेकिन बाबा की तरफ से जैसे ऐसे टचिंग आती, जो करना है अभी कर लो, सफल करो। अगर आपने डिले किया तो कहते हैं डिले इज डेंजर। अगर सफल नहीं हुआ तो, अगर किसी का ले लिया और कार्य में नहीं लगाया, सफल नहीं हुआ, तो उसका बोझ, उसका हिसाब किताब हमारे साथ जुड़ जाएगा। इसलिए कर्मों की बहुत गहरी फिलॉसफी है। अगर कोई बच्चों ने कुछ सहयोग दिया है, बाबा अपने इस ब्राह्मण परिवार में दान शब्द को परिवर्तन करते हैं, कहते हैं आपस में यहाँ ब्राह्मण परिवार में दान नहीं दिया जाता, यहाँ सहयोग देना ही दान है। कितना हम सभी बाबा के कार्य में, स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते हैं। भगवान को हम दान देंगे क्या? क्या दान देंगे? वो तो खुद दाता है, सबको देने वाला है। और बाबा कहेगा, अगर कोई कहे मैं दान देता हूं, कहता दान तो स्वीकार नहीं करता, मैं किसी का दान नहीं लेता। बच्चे बाबा के कार्य में सहयोग देते हैं, मदद देते हैं, और जो उनके पास शक्तियां हैं, हम सब ने तो भक्ति मार्ग में यही कहा है, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, ना लागे कुछ मेरा। और ये भी एक वायदा किया कि जब आप आएंगे तो हम पूरा आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, वारी जाएंगे। कुछ दिन से बाबा की मुरली में आ रहा है कि मैं चैतन्य हूं, मैं सुनता हूं, मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं। अभी वर्तमान समय हम सभी बाबा के बच्चों को बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करना चाहिए कि जो शक्तियां बाबा ने हम सबको संभालने के लिए अमानत रूप में दी हैं, हमने समर्पित किया, और बाबा कहता बच्चे मैं लेके करूंगा क्या, मुझे तो कहीं ले नहीं जाना है। मैं आप बच्चों को ही कहता हूं, इसको संभालो और इसको श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। तो आप सभी एक बात को बहुत महीनता से चेक करना, सूक्ष्म रीति से, कि ये तन अगर समर्थ है, शक्तिशाली है, कुछ इसे किया जा सकता है, चलो बड़ी आयु हो गई है, कोई बीमारियां रहती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब तक ये तन शक्तिशाली है, कुछ किया जा सकता है, तो क्या नई दुनिया की स्थापना के कार्य में, बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में, मेरे इस तन की शक्ति सफल होती है, या हम अपने लौकिक परिवार को ही संभालने में लगे हुए हैं, अपने ही कार्य में व्यस्त रहते हैं। कई स्थानों पर मैं सेंटर्स पर बहनों के पास जब जाता हूं तो पूछता हूं, इतना बड़ा सेंटर है, आप ब्रह्मा भोजन रख रहे हैं, आप ये कार्य कर रहे हैं, इतने सबको भोजन खिला रहे हैं, सब व्यवस्थाएं दे रहे हैं, कौन सहयोग देता है? तो सहयोगी आत्माओं को निकट मिलाते हैं, उनसे बात कराते हैं। जो माताएं अपने घरों में कभी काम ही नहीं करती, नौकरों से कराती हैं, अपने लौकिक में करने वाले बहुत हैं, परिवार में उनको कुछ करने भी नहीं दिया जाता, लेकिन बाबा के घर में आकर के वो बर्तन मांज देती है, बाबा के घर में आके वो झाड़ू लगा रही हैं। उनसे पूछते हैं आप सब क्यों करते हो, कोई दूसरे भी कर सकते हैं, नहीं नहीं इसी से मेरा भाग्य बनेगा, इससे मुझे शक्ति मिलती है, इससे मैं निरोगी रहती हूं, इससे मुझे बहुत बल मिल रहा है। ये तन बाबा के कार्य में जिस आत्मा ने बहुत दिल से लगाया, सेवाएं दी की, एक बात जब से मैं समर्पित हुआ मधुबन में रहा तब से ध्यान पर रहती है कि रुद्र भगवान ने यज्ञ रचा और यज्ञ पिता और यज्ञ माता को निमित्त बनाया, यज्ञ पिता प्रजापिता ब्रह्मा को शास्त्रों में कपल मुनि कहते हैं, और उस कपल मुनि के साथ एक कामधेनु माँ भी है, जगदम्बा माँ है। वहां तो दिखाते हैं कपल मुनि थे, उनके पास एक गाय थी जिसको कामधेनु कहते थे, और कामधेनु गाय के सामने कोई भी कामना लेके जाओ तो पूरी हो जाती थी। अब वो गाय के आगे कामना कैसे पूरी होती होगी, लेकिन यादगार बनाई गई है संगम युग पर, जब स्वयं शिव परमात्मा रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं और यज्ञ पिता यज्ञ माता को यज्ञ की संभाल की जवाबदारी मिलती है, तो इस यज्ञ में जिन आत्माओं का सहयोग बनता है लगता है, जिस प्रकार से भी लगता है, तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, अपनी कोई ना कोई विशेषता लगाते हैं, अगर कोई भी आत्मा बहुत सच्चे प्यार से और अपनी स्वेच्छा से, कहने से नहीं, बाबा उसके लिए क्या कहता है, कहने से करे वो मनुष्य, बिगर कहे करे वो देवता, और जो कहने से भी न करे उसको तो बाबा कभी नाम नहीं देता है, डैश लगा देता है। स्थापना का, विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा महान कार्य है परमात्मा के द्वारा हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, और अगर इस कार्य में किसी ने बहुत सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपना तन लगा दिया, अपना मन लगा दिया, अपना कुछ धन लगा दिया, तो यज्ञ पिता यज्ञ माता प्रसन्न हो जाते हैं। अगर यज्ञ माता और यज्ञ पिता को हमने प्रसन्न कर लिया, तो मेरा अनुभव तो ये कहता है कि कोई भी कामना, कोई भी संकल्प, कोई भी इच्छा रहती नहीं, सब पूरी हो जाती। इस समय जो अव्यक्त इशारे चले ना संतुष्टता के, संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति। है ही नहीं हो गए हम संतुष्ट हैं वो अलग बात है, लेकिन जब सब प्राप्तियों से आत्मा संपन्न है तो हम कह सकते हैं हम संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, भरपूर हैं। और बाबा भी वर्तमान समय एक स्लोगन पहले चेंज किया, पहले कहते थे अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, और अभी अव्यक्त बाबा ने कहना शुरू किया अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मेरे ब्राह्मण बच्चों के खजाने में है। शायद कोई ऐसा हो जो उसको लगता हो मेरे पास ये चीज नहीं है, कम है, और उसका भी एक कारण जहां तक मैं नोट करता हूं, मुझे जो लगता है वो ये है कि वो दूसरों से भेंट करता है, इसके पास इतना बढ़िया सेंटर है, इसके पास ऐसी अच्छी गाड़ी है, इसके पास ये साधन है, मेरे पास नहीं है। भेंट करने से कभी कभी लगता है कि मेरे पास कम है, लेकिन अगर भेंट न किया जाए, जितना दिया है बाबा ने हर एक को इतना दे दिया है, अगर उसी को अपने आप में मनन में चिंतन में लाए कि बहुत कुछ बाबा ने दिया है, हर प्रकार से भरपूर किया है, कोई को भी खाली नहीं रखा संगम पर भी, और जो कुछ दिया है उसको बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है, दूसरों को देना, दान करना, चाहे सहयोग के रूप में हम दान कर रहे हैं, चाहे किसी को ऐसे भी स्थूल रूप में भी दान दे रहे हैं। अगर कोई बाबा के बच्चे में कोई भी शक्ति है और संगम पर उसने इस विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, बहुत बड़ा एक विश्व परिवर्तन का महान कार्य है जो स्वयं परमात्मा बड़े गुप्त रीति से कर रहे हैं और अपने बच्चों से करा रहे हैं। बाबा का कहना है कि मैं किसी से मांगता नहीं हूं और किसी से डोनेशन चंदा भी इकट्ठा नहीं करता, हमारे विद्यालय का ये नियम ही नहीं है। अगर कोई बाबा के बच्चे, जब बाबा के पास कोई आते थे साकार में भी कि बाबा आपका यज्ञ का खर्चा कैसे चलता है, तो बाबा थोड़ा रमणीकता से एक जवाब देते थे पांडव भवन में कुआं खुदा था, नया नया कुआं बनाया गया था, तो बाबा उनको हंसते हुए कहते थे हमारे पास दूल्हे लाल का कुआं है और उस दूल्हे लाल के कुएं से पैसा आता है। दूसरा बाबा कहते थे अरे बच्चे, कोई माँ बाप को 5-7 बच्चे कमाने वाले होते हैं तो भी उनसे नहीं पूछा जाता है बाबूजी आपका खर्चा कैसे चलता है, बच्चे कमा रहे हैं और मैं तो बछड़े वाल, कितने मेरे बच्चे हैं, हजारों लाखों, और सभी बच्चे कमाने वाले, कोई ऐसा ही नहीं जो बेरोजगार हो, सबके पास कुछ न कुछ साधन है, कमा रहे हैं और कमा ही नहीं रहे हैं, उससे बचा रहे हैं, क्योंकि उनकी जितनी व्यर्थ की खर्चे थे वो सब बच गए, देखा देखी नहीं है, कोई ऐसा खान पान नहीं है, कोई ऐसा शौक नहीं है, लोगों का कितना धन तो शौक मौज में चला जाता है, देखा देखी में चला जाता है, व्यसनों में चला जाता है, और बाबा के बच्चे सब निर्व्यसनी हैं, बिल्कुल साधारण सिंपल रहते हैं, सैंपल बन के रहते हैं, और उसमें से अपना कुछ बचा करके भगवान के काम में लगा देते हैं, जिससे उनका बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है। इस बात को बहुत ध्यान देना कि कोई मुझे कहे कि इतना करना चाहिए, इतना सहयोग देना चाहिए, क्यों कहे, क्या हमें समझ नहीं है, अगर मेरे ऊपर इतना खर्च है, इतनी सारी सेवाएं ले रहे हैं, इतनी अच्छी पालना हमें मिल रही है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कुछ फर्ज है, और केवल हम जितना लिया है उतना ही हम कर रहे हैं, नहीं, हम तो बाबा के कार्य को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए जो शक्तियां बाबा ने मेरी दी हैं वो शक्तियां ईश्वरीय सेवा में सफल होनी चाहिए। अब मैं आपके आगे 5-6 शक्तियां रखता हूं जो आपके पास हैं, चेक करना किसी के कहने से कर रहा हूं, गुप्त कर रहा हूं, और जो है उसको तुरंत कर रहा हूं या कल के ऊपर टाल देता हूं कि आपके ऊपर है। वैसे बाबा क्या कहते हैं, कल काल का नाम है, और जिसने कल कल किया ना, एक व्यक्ति था यहां पर राजस्थान में, बहुत बढ़िया बाबा का अनन्य बच्चा था, बहुत बढ़िया सेंटर बनाया 3-4 मंजिल का, और एक मंजिल में खुद रहता था, उसको हमारे रमेश भाई जी थे उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको बार बार कहते थे बाबूजी ये मकान आप लिखत में हमारे कायदे अनुसार, ईश्वरीय विधान के अनुसार आप इसकी रजिस्ट्री करा दो, इसको लिखत में दे दो। बहुत रमणीकता से कहता था अरे हम तो बैठे हैं ना, बाबा का ये तो है, इस पर कोई कब्जा नहीं है किसी का, ये हमारा है, हमने बनाया है, हमने यज्ञ को दिया है, नीचे 2 फ्लोर में बहने रहती हैं, सेंटर चलता है, ऊपर मैं रहता हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहो। और अचानक उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ते ही उसके पता नहीं कहां कहां के संबंधी आ गए, और सब ने कहा इस पर मेरा हक है, मेरा हक है, मेरा हक है। उस समय दादी प्रकाशमणि जी थी, बोली जिसका हक है उसको दे दो, ये ब्रह्मा कुमारी का नहीं है, क्योंकि उसने लिखत में नहीं दिया है। अब वो तो चला गया, उसके बाद वो मकान खाली कहना पड़ा, दे दिया बहनों ने। क्या सफल हुआ? अगर कोई को सफल करना ही है और जो कायदे हैं, कायदे प्रमाण अपना तन मन धन सफल करता है, तो कुछ भी अचानक हो जाता है सफल हो जाता है, और नहीं कर पाया, किसी का बैंक में रह जाता है, किसी का उसके संबंधी लेके चले जाते हैं। एक स्लोगन बाबा देते हैं साकार मूल्यों में आता है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोल लूट जाए और किसकी जलाए आग, लेकिन सफल होगी उसके जिसने खर्च किया धनी के नाम पर। धनी तो शिव बाबा ही है। तो आप सभी बाबा के बच्चे ज्ञानी तु आत्माएं हैं, अपने आप से पूछना। 4 शक्तियां हैं, एक संकल्प की शक्ति है, इस संकल्प की शक्ति को मैं कहां तक सफल कर रहा हूं। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है हर एक के पास। अगर इसमें बहुत इधर उधर के ख्यालात चलते रहते हैं, बार बार व्यर्थ और नेगेटिव चलता है, कोई ने कुछ कह दिया, कहीं से कुछ सुन लिया, वही चिंतन चलता रहता है। संकल्प जो बार बार चलते हैं, रिवाइज किए जाते हैं, वही वही चलते रहते हैं, उनसे ही हमारी वृत्तियों का निर्माण होता है, एटीट्यूड बन जाता है, दृष्टिकोण हमारा ऐसा बन जाता है, और फिर वो संकल्प जो वृत्ति और संस्कारों में चला गया, उसके आधार से जब वो व्यक्ति सामने आता है तो वही संकल्प फिर से चलने लगते हैं। भले 10 साल के बाद वो मिले आके, कहते हमने सोचा नहीं था, पता नहीं क्यों ऐसे संकल्प चल गए, बोल दिया, कर लिया। इस संगम के समय पर इस संकल्प शक्ति के महत्व को जानना बहुत आवश्यक है। ये बहुत बड़ी संपत्ति है। संकल्प की संपत्ति को अगर हम सफल कर रहे हैं, जितना आवश्यक है उतना ही हम सोचते हैं, अधिक नहीं। संकल्पों पर भी हमारा अपना कंट्रोल है, नियंत्रण है। बाबा ने इस समय अव्यक्त बाबा की मुरलियों में, मुरलियों के बाद ड्रिल जरूर आती है, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो, और वो संकल्प की एक्सरसाइज है। आप सभी बीच बीच में जरूर करते होंगे अभ्यास कि साकार सृष्टि से, साकार सृष्टि के देह, देह की दुनिया के संकल्पों से ऊपर उठ करके व्यक्त वतन, मूल वतन, उस समय उस स्थिति में हम रहें जहां संकल्प बहुत सीमित हैं, शून्य तो नहीं है, जड़ता नहीं है, लेकिन अनुभव के संकल्प हैं, प्रेम के संकल्प हैं, प्रभु प्यार के संकल्प हैं, जो पाया है उसके संकल्प हैं, और उन्हीं संकल्पों में आत्मा जब स्थिर रहती है। तो 3-4 दिन से एक वरदान चल रहा था स्नेह की शक्ति पर, जहां स्नेह की शक्ति, बाबा ने कहा यही संपूर्ण ज्ञान है। क्या मैं आत्मा कुछ समय के लिए परमात्म स्नेह में समा करके अपने सब संकल्पों को अपने कंट्रोल में ले लेती हूं? अगर इस पर हमारा कंट्रोल आ गया तो जो संकल्प हम करना चाहें वही संकल्प उठे और वो कार्य हो जाए। सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, होता ही नहीं है, माना संकल्पों में कहीं न कहीं कुछ मिक्स है, मिलावट है। अगर संकल्प बिल्कुल प्योर हैं, केवल परमात्म कार्य के लिए हैं, स्थापना के लिए हैं, उसमें कोई जरा भी अपना स्वार्थ नहीं है, मेरा नाम होगा, मेरी महिमा होगी, मैंने इतना बड़ा सेंटर बनाया, मैंने ये किया, मैंने इतने स्टूडेंट निकाले, मैंने ये, जरा भी कुछ नाम मान शान किसी भी प्रकार के दिखावे की भावना है तो संकल्प में मिक्स है और वो संकल्प कभी सिद्ध नहीं होते। इसलिए बहुत ध्यान देना, बहुत निस्वार्थ भाव के संकल्प। संगम युग पर हम सब केवल ईश्वरीय सेवा के लिए हैं। भले आप लौकिक प्रवृत्ति भी संभाल रहे हो, संगम पर बाबा ने अपने बच्चों को नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बनाया है, और हम सब उस बात को समझ करके चलें, जो स्थूल लौकिक जवाबदारियां हैं उनको निभाते हुए भी बुद्धि में है कि परमात्मा ने मुझे चुना है और मुझे उनके इस कार्य को संपन्न बनाने में अपना कुछ न कुछ योगदान जरूर देना है। और वो सबसे बड़ा योगदान है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना। सतयुगी सृष्टि संकल्प से उत्पन्न होती है। योग बल क्या है? योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, योग बल से सृष्टि चलती है। वो योग क्या है? शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है। और उस श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को इस समय हम कहां गंवा रहे हैं, किधर किधर जा रही है, जो देखते हैं कुछ भी लेना देना नहीं, ये ऐसे क्यों किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। ये सूक्ष्म अपना बुद्धि का अभिमान हमारे संकल्प शक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए इस शक्ति को पहचान करके इसको श्रेष्ठ कार्य में सफल करो। कुछ नहीं है, बाबा की याद में बैठ जाओ। बाबा ने कई बार ये कहा है, तुम शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी सेवा है, विश्व को शांति का दान मिलेगा। शांत स्वरूप स्थिति में बैठते ही शांति के प्रकंपन फैलेंगे और वो प्रकंपन कई आत्माओं की अशांति को दूर करेंगे। क्या ये दान हम करते हैं? ये दान महापुण्य है। इस दान पर बहुत ध्यान देना। बहुत सारी आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, चिंताग्रस्त हैं, भटक रही हैं। बाबा आज भी कहते, बच्चे पुकार तो सुनो, उस दुखियों पर रहम करो। पुकार रहे हैं, कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। कुछ और रहम करने की जरूरत नहीं, केवल एक शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ। ये प्रकंपन जो निकलेंगे, ये जो वाइब्रेशन जाएंगे, उस आत्मा को बहुत अच्छा सहारा देंगे, मदद करेंगे। ये सबसे बड़ा पुण्य है और ये पुण्य करने वाली आत्मा बहुत बड़ा भाग्य बना रही है। इसलिए संकल्प शक्ति श्वासों की भी शक्ति है। श्वासों श्वास एक बाबा की याद रहे, अजपा जाप जिसको कहते हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे धड़कन में भी कहते हैं, धड़कन में भी राम राम राम, वो तो राम राम कह दिया, देहधारी की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन राम कौन? शिव बाबा की तरफ हम सबका ध्यान जाता, परमात्मा की तरफ ध्यान जाता। श्वासों श्वास अजपा जाप, एक बाबा ही दिल में बसे, ये श्वासें हमारी सफल हो जाएं। बाबा कहता है, जिसने इन श्वासों को सफल कर लिया, उनकी श्वास कभी बीच में अटकेगी नहीं, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। दान करो, श्वासों से शक्तियों का दान करो। हर श्वास सफल हो, हर श्वास में बाबा बस जाए। और समय एक बहुत बड़ी शक्ति है, संगम का अमूल्य शक्ति जिसको बाबा कहते हैं। संगम का समय बहुत अमूल्य है और इस अमूल्य समय को कहां कहां सवेरे से रात तक अपना कभी बजट बना करके देखना, कहां जाता है, किधर जाता है, कितना समय हमारे चिंतन से, हमारे बोल से, हमारे कर्मों से, हमारा ये संगम का अमूल्य समय सफल होता है। या जहां बैठ गए, जो मिल गया, उसके साथ इधर की बातें उधर की बातें, पर चिंतन पर दर्शन, बहुत सारा समय हमारा इसी में चला जाता। समय को बचाना है। अगर कोई ब्राह्मण आत्मा को अपनी उन्नति करनी है तो एक स्लोगन लिख के रख दो, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। लेकिन पर चिंतन मैं कर रहा हूं, कई बार ये भी पता नहीं चलता। बैठ गए, बातें करने लगे, ये ऐसे करते वो ऐसे करते, यहां ऐसा चलता वहां ऐसा चलता, कर कुछ नहीं सकते हैं और बैठ करके परपंच करते हैं। इसलिए संगम का समय बड़ा अमूल्य है। मुझे तो एक बहुत संकल्प रहते हैं, ध्यान रहता है, जितना हो सके जब भी समय मिले मुरली पढ़ो, क्लासेज पढ़ो। इतना अच्छा साहित्य है, मन बुद्धि को खूब बिजी करो। इसको फ्री नहीं छोड़ा, नहीं तो कहावत है ना, फ्री घर शैतान का डेरा। जितने व्यर्थ खुराफात के व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं, उन सब का आधार यही है कि हम उसको खाली छोड़ देते हैं। श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन, अच्छा साहित्य का चिंतन करो और उसमें मगन रहो, मस्त रहो। बाकी का कोई भी चिंतन अगर चल रहा है वो समझो हमारा समय नष्ट हो रहा है। समय को बचाना, समय की कदर करना, समय को हम बचाएंगे, समय हमें बचा देगा। तो सभी इस बात का ध्यान देना, श्वास, संकल्प, समय, और चौथी है संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति, गुणों की संपत्ति या स्थूल संपत्ति। जो संपत्ति बाबा ने हमें दी है, जो भी संपत्ति, हर एक संपत्ति का मालिक है। और बाबा कहते हैं मेरे बच्चों जैसा संपत्तिवान मालामाल और कोई भी नहीं दुनिया में है। जब स्थूल संपत्ति नहीं थी यज्ञ में, जब माउंट आबू में आए हैं 1950-51 में, बिल्कुल खाली हो गया खजाना, कुछ भी नहीं यज्ञ में। यहां तक 350 लोग खाने वाले हैं, उनके लिए एक रुपया भी भंडारे में नहीं है। बेफिक्र बादशाह बाबा, और ये सिखाता है कि मांगने से मरना भला। भूखा एक दिन भी नहीं रखा, कहीं ना कहीं से आया, भोजन बना, लेकिन इतना पक्का कराया, बच्चे तुम्हारे पास जो धन है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए लिखो उस समय बाबा के वाक्यों में, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ओम मंडली में उस समय ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्या था? स्थूल धन नहीं था, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को इतना नशा चढ़ाया कि तुम्हारे पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, श्रेष्ठ चरित्र का धन है, इस धन का दान करो, ये बांटो। और जिसने इस बात को समझा, नहीं समझ पाए तो वो धन कमाने के लिए भाग गए, चले गए। उसके पीछे भी कई रहस्य हैं, उनके जाने में भी कुछ कल्याण था। बाहर विदेशों में गए, इधर गए उधर गए, सेंटर्स खुले। लेकिन जो बाबा के बच्चे घर में रहे, पक्के थे, निश्चय बुद्धि थे, मरेंगे जिएंगे लेकिन जो बाबा कहेगा वही करेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे पास धन है, ज्ञान का चित्र है, ले जाओ बांटो, ज्ञान धन दो। और बहनों ने वो ज्ञान धन दिया, वो धन सब आने लगा, स्थूल भी आ गया। तो वर्तमान समय अगर हमारे पास स्थूल में नहीं भी है तो भी बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर जो विशेषताएं हैं, तीन शक्तियां तो हर एक साथ हैं। एक मनसा की अच्छी शक्ति अगर है, मन कंट्रोल में है, बाबा कहते हैं मनसा से शक्तियों का दान करो। लोगों का मनोबल कितना गिरा हुआ है, छोटी छोटी बात में निराश, उदास, हताश हो जाते हैं। आज बाबा ने मैं को बड़े अच्छे शब्दों में स्पष्ट किया, एक मैं अभिमान वाला है, एक मैं सुमान वाला है, एक मैं दिल शिकस्त बनाने वाला है, और एक मैं दिल खुश करने वाला है। मुरली पर ध्यान गया ना, आज की मुरली पर सवेरे है मैं ही। किस मैं को बलि चढ़ाना है, किसको नहीं चढ़ाना, वो भी ध्यान देना। अगर हम सभी मनसा को इस मैं के निराशा उदासा वाले मैं से मुक्त कर दें, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, एक महान आत्मा, परमात्म चुनी हुई आत्मा, उनके दिल तख्त नसीन आत्मा, उनके मस्तक पर विराजमान रहने वाली मस्तक मणि आत्मा, उनके नयनों में बसने वाली नूरे रतन आत्मा, ये समान ले लें, और उस समान में स्थित होकर के अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से दान करें शक्तियों का। कमजोर आत्माएं शक्तिशाली बन जाएंगी। मनोबल का दान, मन की शक्तियों का दान, वो हमारे मन को स्थिर करेगा, एकाग्र करेगा, मन मनाभाव रहने में बहुत मदद करेगा। इसलिए मनसा से शक्तियों का दान, और जो वाचा है हमारी उससे ज्ञान दान। जो भी आए, जो भी मिले, दो मिनट भी किसी से बात करनी है, फोन पर भी कोई बात करनी है, बाबा का एक रतन तो कम से कम उनको दे दो। अच्छी सी बात बाबा की मुरली की सुना दो, वरदान की सुना दो, स्लोगन से सुना दो, कोई एक बात भी ज्ञान दान करना, जिससे ये वाणी बहुत अमूल्य बन जाएगी। बाबा कई बार कहते हैं ये वाणी वरदानी बन जाएगी, जो बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सत्य वचन महाराज कहा जाता है, उनके वचन सत्य हो जाएं, बाबा के दादियों के वचन सत्य हो गए, जो बोला हो गया, जहां बैठ गए वहां तीर्थ बन गया। मैं जानकी दादी का अनुभव यही रहा कि जहां वो गई, जिस देश में पांव रखा वहां सेंटर खुल गए। शुभ संकल्प की शक्ति, क्या दान करती उनकी इतनी श्रेष्ठ भावनाएं, इतने अच्छे संकल्प। जब वो विदेश जाने लगी, बाबा ने उनको कहा कि आप बच्चे जाओ लंदन में, तो पहले दादी ने ऐसे बोल दिया, बाबा मैं क्या करूंगी, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है और मेरे को आप भेज रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची वहां जा करके दूसरा मधुबन बनाना, मधुबन में रहे मधुबन बनाना। बस दादी ने संकल्प लिया, मुझे वहां जाके मधुबन बनाना है। और वो मधुबन ऐसा बनाया, मैं दो बार लंदन गया देखा, डायमंड हाउस भी है तो ग्लोबल हाउस भी है, हर प्रकार का 60 एकड़ में रिट्रीट सेंटर है ऑक्सफर्ड में। उनके क्लास में 700 स्टूडेंट लंदन में, विदेश के, हिंदी इंग्लिश दोनों, योग बल, पालना का बल, स्नेह का बल, उससे कई आत्माएं अपने आप आकर्षित होकर के आई। केवल ज्ञान थोड़ी सुनाया, पालना दी, स्नेह दिया, और संकल्प की इतनी शक्ति है उसका प्रयोग किया, शुद्ध संकल्प से इतनी रचना रची, पूरे विश्व के अंदर ही भ्रमण किया। लेकिन लंदन अमेरिका में मैंने देखा दादी जी की वो तपस्या के इतने अच्छे वाइब्रेशन से इतनी चारों तरफ सेवाओं का विस्तार हुआ है। संकल्प किया और हो गया, उन्होंने अपने संकल्प को व्यर्थ नहीं किया, एक संकल्प भी। कभी कभी हम कोई ऐसे पत्र ले जाते थे सुनाने के लिए, मेरे को ऐसे आंख दिखाती, क्या है, डोंट थिंक, मेरा हंसता हमने दादी ऐसी बात है, ये हो रहा है, ये हो रहा, डोंट थिंक, ऐसे संकल्प तो सोचता क्यों है, बाबा बैठा है ठीक हो जाएगा। तुम बहुत पॉजिटिव रहो, बहुत अच्छे तरह से ज्ञान का कुछ खजाना भेज दो उसको। कभी उस बात का वर्णन चिंतन ही नहीं किया, ये विघ्न है, ये बात है, ये बात है। कई बातें विघ्नों की चिंतन में लाने से भी बड़ी हो जाती है, और वर्णन कर देते हैं तो उसका पहाड़ बन जाता है। हमारी दादियों ने किसी विघ्न का वर्णन किया ही नहीं, आएंगे। अभी आप मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो साइट सीन नहीं आएंगे क्या? साइट सीन्स हैं ये सब, और साइट सीन्स को देख करके कोई यात्री रुकता नहीं है, आनंद का अनुभव करता है। अगर सूखा रास्ता हो, साइट सीन ही ना हो, तो मजा ही नहीं आएगा। इसलिए हमारी इस रूहानी यात्रा के अंदर हम बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई ऊंची पहाड़ी पर और फिसलने वाली पहाड़ी पर चढ़ रहा हो, कहते थोड़ा संभल के पांव रखना, सहारा लेकर के चलना, धीरे धीरे चलना, नहीं तो फिसलोगे तो पता नहीं ऊंचे से नीचे कहां जाओगे, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। मनुष्य से देवता बनना है, संपूर्ण पावन बनना है। आज बाबा क्या कह रहे थे, संपूर्ण पावन, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन उनके जो बाल बच्चे हैं उनको पर भी ध्यान दो, उनको भी खत्म करना है। उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए ये सब कलयुग के वातावरण में हम सब रह रहे हैं, जहां पांचों तत्व दूषित हैं, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियां तमो प्रधान है, चारों तरफ नेगेटिव वातावरण बना हुआ है, कई आत्माएं उसी इच्छाओं से इस वायुमंडल में भटक रही हैं, उसके बीच में हम सबको कितना अटेंशन रखना होगा, कोई भी प्रकार का प्रभाव मन के ऊपर न पड़े, इतना हमारा मन एक बाबा के साथ जुटा हुआ रहे, उसकी छत्र छाया रहे। कुछ दिन बाबा ने पहले मुरली में चलाया, पिछले संडे के जो परमात्म छत्र छाया में रहते हैं उस पर माया की छाया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और छत्र छाया से जरा भी इधर निकल गए तो माया की छाया पड़ जाएगी। हम सब बाबा के बच्चे अपने संकल्पों की शक्ति, छत्री का अनुभव करें, और साथ साथ वाचा की शक्ति और फिर कर्मणा की शक्ति। कर्मणा से भी दान होता है। दादी को बाबा कहते थे, जानकी दादी को, बच्ची तुम गुणों का दान करती हो, कर्मणा से गुणों का दान लास्ट तक भी करके हो गई। जो संकल्प किया, एक संकल्प सुनाता हूं मैं। एक दिन मेरे को बुलाया, कहती है राजू तुम मेरा विल लिखो। तो मैं हंसने लगा, दादी आपके पास कुछ है क्या जो विल लिखाओगी? अरे लिखना मेरा विल लिख। मैंने कागज निकाला, पेन डायरी निकाली, लिखने हमने लिखाओ, मैं जब शरीर छोड़ूं तो मेरे ऊपर, मेरी अर्थी पर कोई भी फूल माला नहीं चढ़ेगी। मैं हंसने लगा, दादी आप मुख्य प्रशासिका हैं संस्था की, आप शरीर छोड़ेंगी तो आपको क्या पता मेरे पर कितने फूल चढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लिख। ठीक है, लिख लिया मैंने, कोई को कहीं से आने की जरूरत नहीं है। अब ये मैं समझता हूं 5-7 साल पहले लिखाया होगा, कोई को भी आने की जरूरत नहीं जब मैं शरीर छोड़ूं, उनको पक्का था मैं शरीर छोड़ने वाली हूं, छोड़ूंगी, शरीर तो सभी छोड़े, उनको पक्का रहता था। रात को सोऊंगी, सुबह उठूंगा या नहीं, दो बातों का ध्यान देना, मेरी अलमारी में कोई पैसा किसी का नहीं मिलना चाहिए मरने के बाद, कोई लिफाफा हमारे पास नहीं होना चाहिए, जो बाबा के बच्चे दे के जाते हैं उसी समय दे दो भंडारे में, और कोई का पत्र नहीं रहना चाहिए जिसका उत्तर न गया हो। दो बातों का इतना ध्यान, रात को सोने के पहले दोनों चीजें चेक करो, कोई लिफाफा नहीं रखा अंदर, कोई का पत्र, कोई के प्रश्न तो नहीं है जिनका उत्तर उसको चाहिए, उसी समय बुलाओ उसको, दे दो, उत्तर देने वाले को दे दो, पैसा संभालने वाले को दे दो, कल पता नहीं उठूंगी या नहीं उठूंगी। अब वो संकल्प इतना पावरफुल था, उस पावरफुल संकल्प से उन्होंने जब शरीर छोड़ा, उस समय लॉकडाउन था, 27 मार्च 20 को शायद लॉकडाउन लगा, उसके 7 दिन के बाद शरीर छोड़ा, कोई फूल नहीं चढ़ा सकता, कोई आ ही नहीं सकता, एक व्यक्ति नहीं आ सकता, 20 लोग केवल सामने, क्या शक्ति थी संकल्प की। वो बिल मुझे याद आया, मैंने सबको भेजा, अपने ये बिल लिखा के गई है। एक एक संकल्प में शक्ति थी, और एक एक कौड़ी को सफल किया, जरा भी कहीं व्यर्थ नहीं, मेरे ऊपर कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। हम सब बाबा के बच्चे जो शक्तियां हैं सफल करें, तुरंत करें और पुण्य जमा कर लें, किसी से पूछने की, किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। जो बाबा ने मुझे पर्सनल दिया है, तन मन धन समय संकल्प श्वास, वो सब ईश्वरीय सेवा में सफल करते चलो, पुण्य बनता जाएगा। और वो 3 खाते बाबा हमेशा कहते हैं हरेक के जमा होने चाहिए, अंत समय कभी भी आए तो ये न कहें हमने तो कुछ कर ही नहीं पाया, पश्चाताप न करना पड़े। इसके लिए गुप्त पुरुषार्थ करके, अंदर का पुरुषार्थ, वो कौन सा? आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ, इस देह अभिमान को गलाने का पुरुषार्थ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये पाठ अगर पक्का कर लिया तो बहुत गुप्त पुरुषार्थ है। देही अभिमानी बनने से आत्मा पावन बनती जाएगी, और जितनी वो पावन बनेगी उतना उसका पद श्रेष्ठ हो जाएगा, प्रारब्ध अच्छी हो जाएगी। तो ये गुप्त पुरुषार्थ करके हम अपनी ऊंचे से ऊंची प्रारब्ध बना लें, और अपने इस परिवार में एक दूसरे को समय पर साथ दे करके, समय पर सहयोग दे करके, उसकी कमी कमजोरी संस्कार हिसाब किताब को देखने की बजाय, अगर देख लेंगे तो सहयोगी नहीं बन सकते हैं, सबके साथ वो हिसाब किताब, लेकिन बिना किसी के स्वार्थ के, बिना, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारा ये परिवार है, इस बेहद भावना से हम अगर एक दो को समय पर साथ देंगे, सहयोग देंगे, तो उनकी दुआएं मिल जाएंगी, और वो दुआएं किसी भी समय कोई भी पेपर आएगा वो सहज पार करा देंगे, उस पेपर में कभी रुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। इसलिए सभी इस समय ध्यान देना, ये अंतिम समय की अंत है, इसलिए हम सबको ऐसा भाग है। तो ये दूसरा खाता दुआओं का खाता है, वो सबका जमा होना चाहिए। और तीसरा बाबा जो आज कह रहे थे, तुरंत दान महापुण्य और गुप्त दान महापुण्य, ये तीनों खाते अगर जिसके फुल हैं वो आत्मा नंबर वन ले सकती है। और कलयुग के अंत में बाबा भी यही चाहते हैं। ओम शांति।